Nityam dhyayanti yogina kamadam mokshadam chaiva omkarayana namah avirala shabda ganauga prakshalita sakala bhutala kalanka munivirupasit tirtha saraswati ratuno duritam अज्ञान्तिमरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परं गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रपरणां मोक्षशास्त्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमत् उमास्वामी आचार्यदेवैर्विरचितम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये महावीर भगवान की आचार्य उमा स्वामी महाराज की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की आज अपन संवर और निर्जरा तत्व के बारे में नौवें अध्याय में जैसा तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने वर्णन किया है उसका अध्ययन करेंगे विचार करेंगे। निरंतर संसारी जीवों को कर्मों का शुभ अशुभ रूप में आश्रय होता रहता है और शुभ अशुभ कर्म आत्मा के साथ निरंतर बंधते रहते हैं। जीव अपने परिणामों के द्वारा उन कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो इसके लिए आवश्यक है कि वह आश्रय को बंद करे और बांधे हुए जो कर्म हैं उनकी निर्जरा करे। सो जिन परिणामों से बंधे हुए कर्मों से मुक्ति मिलती है वे ही परिणाम कर्मों के आने को भी रोक देते हैं। सो जो संवर के कारण है वे ही निर्जरा के कारण भी हैं। संवर और निर्जरा तत्व का अनुभव सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है और सभी सम्यक दृष्टि जीव करें सो ऐसा भी नहीं है। जिसने देह संयम और सकल संयम धारण कर लिया है उसके ही अविपाक निर्जरा जो कि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है जो संवर पूर्वक होती है वह उपलब्ध हो जाती है। सम्यक दृष्टि जो अविरत है उसके लिए तो जिस समय जिस विशुद्धि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है सो अंतर मुहूर्त पर्यंत कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। इतना ही उल्लेख आचार्य भगवंतों ने किया है। बाद में उसके तो 41 प्रकृतियों की बंद विच्छुति हुई है उसे हम संवर न माने। संवर तो अपने आत्मा की विशुद्ध परिणामों से, जो अपन कर्मों के आने को रोकते हैं और बने हुए कर्मों को खिपाते हैं, वह कहलाता है। सो ऐसी जो संवर पूर्वक अविपाक निर्जरा है, वह तो देश संयमी और संयमी को ही होती है। सो देश संयम तो पांचवें गुण स्थान में त्रियंचों को भी बनता है, और सकल संयम तो छठे सातवें गुण स्थान और उससे ऊपर जो महाव्रतों को धारण करते हैं ऐसे मुनि जनों के ही होता है। इसीलिए पूर्णमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्पष्ट लिखा कि मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा तो सम्यक दृष्टि जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है सो अपनी विशुद्धि से कर लेता है। लेकिन जब सम्यक दृष्टि श्रावक अपनी सामायिक इत्यादि में आत्मा का चिंतन करता है, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा तो जो देश व्रतों को धारण करने वाला पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है वह भोजन करते समय कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अप्रत्याख्यान कषाय भी चली गई। अविरसम्य दृष्टि के तो मात्र अनंतानुवंती कषाय गई है, तदजन्य कर्मों की निर्जरा उसको होगी। और एक देशवती श्रावक सामायिक में लीन होकर आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी विशुद्धि से जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा महाव्रति छठे सातवें गुण स्थान में विचरण करने वाले मुनि महाराज भोजन करते समय कर लेते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याख्यान कषाय भी चली गई है। ऐसा निर्जरा जो कि संवर पूर्वक होती है उसका कथन आचार्य भगवंतों ने किया है, अपन इसमें और विस्तार से पढ़ेंगे। आश्रय निरोधा संवरा, जिन परिणामों के द्वारा कर्मों का निरंतर आत्मा में आगमन होता है, सो वे परिणाम जब हम रोग देते हैं सो उसे ही संवर कहते हैं। बाह्य में पुद्गल वर्गणाएं जो कि कर्म रूप से परिणत होती हैं, सो उनका आगमन रुक जाना, और अंतरंग में जिन परिणामों से कर्मों का कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो रहा था, उन परिणामों को भी अपनी विशुद्धि के माध्यम से रोक दिया, वो परिणाम नहीं हो रहे सो ही भाव संवर जिसे अपन कहते हैं। ऐसा आश्रय के निरोध होने पर ही द्रव्य संवर और भाव संवर दोनों ही आत्मा को होते हैं। अब देखो अपने आप समझ में आ जाएगा कि संवर किन कारणों से होता है और वे कारण कहां पर होंगे। सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री, वह जो संवर है वह तो गुप्ति को धारण करने वाले समिति को धारण करने वाले धर्म को धारण करने वाले सुबह मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाती है कभी कभी, तो ऐसी स्थिति बन जाती। और बहुत ज्यादा वोल्टेज आने का कारण क्या है? डायरेक्ट तार डाल करके बिजली लेना। बस अब आप समझो
डायरेक्ट तार डाल के बिजली लाए हैं, पैसा देते हैं कि नहीं जानी कह रहे हम, लेकिन धर्म का काम करते समय क्या यह उचित है, इसका विचार अपन को करना चाहिए। बस उल्टा है तो कैसा है भाई? अच्छा, बाकी लाइन से डायरेक्ट लेने से कोई हर जाना ले सकते हैं। लेने लेंगे, वही तो वही कहना था मुझे तो। अनुप्रेक्षा जो 12 भावनाओं का चिंतन करता है, उस समय जो विशुद्धि होती है, अकेले 12 भावनाओं की डनलप की गद्दी पर बैठ के पंखा चला के चिंतन करे से नहीं हुई है। विशुद्धि जब होगी 12 भावनाओं के चिंतन करते समय, सो उससे संवर होगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो बड़ा आसान तरीका लगेगा कि हम तो रोज 12 भावना पढ़े, मंगत राय की बड़ी वारी, 12 भावना छोटी वाली भी है, नहीं हम तो बड़ी पढ़े। नहीं, कोई भी पढ़े, लेकिन मुझे संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का भान हो और उनके प्रति अपनी आसक्ति कम हो, सो जो विशुद्ध परिणाम है उनके द्वारा संवर होगा। और परिचय विजय और चारित्रय, इन सब के द्वारा संवर होता है, ऐसा आचार्यों ने लिखा। भूख प्यास की वेदना सहन कर लेना परिचय विजय है, लेकिन भैया चारित्र पूर्वक परिचय सहन करने से कर्मों की निर्जरा होगी, और चारित्रहीन होवे 22 परिचय सहता रहे तो ढीला भर भी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, कर्मों का बंद अधिक होगा। सो ऐसे इनकी व्याख्या समझते समय अपन समझ लें कि मुझे करना क्या है। तपसा निर्जरा चा, आगे इन सब के बारे में अलग अलग वर्णन करेंगे। तपसा निर्जरा चा, और तपस्या से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है, दोनों ही तपस्या के द्वारा प्राप्त हो जाती। अब देखें कि गुप्ती किसे कहते। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, मन वचन काय रूप जो योग हैं उनकी समीचीन प्रकार से निग्रह कर देना। सम्यक शब्द क्यों लिखा? आत्मज्ञान पूर्वक, नहीं तो दूसरे से द्वेषवत दिन भर मौन रह सकता तो गुप्ती नहीं हुई है। हाँ, बोले ही नहीं हम तो। एक जने कहने लगे कि हमारे पिताजी ने आत्मघात कर लिया, देखो तो उनको ऐसा क्यों करना था। हमने कहा कोई ना कोई कारण तो होगा आत्मघात करने का। कहले कछु नहीं, कोई कारण समझ में नहीं आया, हम तो बहुत विचार करती रहे। हमने कही नहीं कोई आपस में बातचीत हो गई हुई तुम लोगों की। कहले नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम तो 2 महीने से नहीं बोले उनसे। अब बताओ तो 2 महीने से नहीं बोले, यही कारण है। बोलना भी कारण है और नहीं बोलना भी उनके आत्मघात में कारण बन गया। तो भैया गुप्ती तो तब कहलाएगी जब समीचीन प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपन सम्यक चारित्र में और गुप्ती धारण करते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध कर देते हैं। 2 प्रकार से गुप्ती का वर्णन है, मन वचन काय की समस्त प्रक्रिया का निरोध कर देना, और दूसरा मन की अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना, वचन की अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना और काय की भी अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना, यह भी गुप्ती है जो कि संवर का कारण बनती है। वैसे तो उत्कृष्ट और श्रेष्ठ यही है कि अपन मौन रहें, लेकिन अगर पूरे समय आपसे मौन नहीं रहा जाता तो कम से कम अशुभ वचन तो आप न बोले, इतनी विशुद्धि तो हम अपने भीतर उत्पन्न कर ही सकते हैं भाई, आज के समय में भी। ईर्या भाषैष नादान निक्षेपूत सर्गा समितया, ये पांच प्रकार की सावधानी पूर्वक की जाने वाली क्रियाएं हैं। एक तो जहां तक हो सके क्रिया ही नहीं करो, निवृत्ति। सो अपने यहां निवृत्ति को ही समीचीन चारित्र माना, लेकिन प्रवृत्ति भी कैसी जो निवृत्ति परक हो। भाव तो हमारा निवृत्ति का है, लेकिन क्या करें, कर्मों के काटने के लिए भी कर्म करना पड़ेंगे। सो समिति में यही कहा गया कि प्रवृत्ति करो तो सावधानी पूर्वक करो। समिति का अर्थ ही है कि सावधानी पूर्वक अपनी सारी क्रियाएं करना। कौन कौन सी क्रियाएं होती दिन भर में? ईर्या, चलना। चलना होता है तो सावधानी पूर्वक चार हाथ आगे जमीन देख करके सूर्य के प्रकाश में जो गमन किया जाता है, जीव रक्षा के भाव से प्रासुक मार्ग से, उसे अपन ईर्या समिति कहेंगे। और भाषा समिति, हित मित प्रिय वचनों का ही उपयोग करेंगे, अन्यथा मौन धारण करेंगे। ऐसे वचन का प्रयोग नहीं करेंगे जो दूसरे के लिए पीड़ादायक हो। भाव तो कम से कम ऐसे रखेंगे ही कि जिससे किसी दूसरे को पीड़ा देने का भाव वचन बोलते समय उत्पन्न ना हो। शोभा वचन बोलते समय भी सावधानी रखेंगे। और आदान निक्ष नहीं, एषणा, आहार के समय जैसे आचार्यों ने विधि विधान कहा है, उसी विधि विधान पूर्वक 40 दोषों और 32 अंतरायों से रहित निर्दोष आहार उत्तम श्रावक के घर में ग्रहण करेंगे। देने पर ही ग्रहण करेंगे, जितने अपने लिए तपस्या में आवश्यक है उतना ही ग्रहण करेंगे। तपस्या के लिए और परोपकार वृत्ति आदि के लिए ही आहार ग्रहण करेंगे। अपनी आयु बढ़ जावे, बल बढ़ जावे, इस भावना से आहार नहीं करेंगे। इतनी सब सावधानियां ईष्णा समिति में आ जाती हैं। आदान निक्षेपण समिति, उठाना रखना भी होगा। भाई बोल ही नहीं पा रहे हैं। उठाना रखना भी करेंगे। अपने पीछे कमंडलू पुस्तक इत्यादि को उठाते रखते समय सावधानी रखेंगे कि किसी जीव का घात ना हो जावे। सो बिना देखे बिना शोधन किए धरेंगे उठाएंगे नहीं। यही आदान निक्षेपण समिति है। और उत्सर्ग समिति, अपने शरीर की जो मलिन अपवित्र चीजें हैं, मलिनताएं हैं, उन सब का विसर्जन ऐसे करेंगे जिससे कि किसी जीव को पीड़ा ना पहुंचे, किसी का घात ना हो। इसे प्रतिष्ठापन समिति भी कहते हैं और उत्सर्ग समिति भी यही कहलाती है। इस प्रकार सावधानी पूर्वक इन क्रियाओं को करेंगे, आवश्यक होने पर ही। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ईर्या समिति में घूमने फिरने के लिए नहीं जाएंगे। प्रयोजन वश ही अन्यत्र कहीं जाना पड़े तो जाएंगे, तब ईर्या समिति कहलाएगी। ऐसा नहीं कि थोड़े चलो सो टहल के आ जाएं, देखते हैं तो चल रहे अपन चार हाथ। नहीं भाई, आपका प्रयोजन क्या है ये पहले विचार करना। जीव दया का भाव अगर है तो प्रयोजन वश ही आवागमन इत्यादि करेंगे। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणी धर्म। जी तो अपन 10 धर्म रोज समझ रहे हैं। क्रोध के अभाव को ही क्षमा कहते हैं। मान कषाय का अभाव होना ही मृदुता या मार्दव धर्म है, और मायाचारी नहीं होना यही सरल परिणाम या आर्जव धर्म है, और लोभ पर विजय प्राप्त करने से शौच धर्म उत्पन्न होता, और जीवन में भेद विज्ञान प्राप्त करना, शरीर अलग है आत्मा अलग है इस प्रकार का अपने भीतर भाव उत्पन्न हुए तब सत्य धर्म प्रकट होता है। अकेले सत्य बोलने से सत्य धर्म नहीं आएगा, साथ में यह विवेक भी होना चाहिए, नहीं तो यह सत्य धर्म तो सबको उपलब्ध हो जाएगा जो सच्ची बोलते हैं। नहीं, जो भेद विज्ञान पूर्वक सत्य का उपयोग करते हैं उन्हें ही सत्य धर्म उपलब्ध होगा। इसी प्रकार आत्मज्ञान पूर्वक ही 6 जीव निकाय के जीवों की हिंसा इत्यादि से निवृत्त होना यह संयम धर्म है, और इच्छाओं का निरोध करने रूप तपस्या करना ये तप धर्म है, और बाह्य और अंतरंग समस्त 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना ये त्याग धर्म है, और शरीर के प्रति ममत्व का भी त्याग करके निर्द्वंद हो करके अपना आचरण करना, सुख और दुख में दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानना, मैं स्वयं ही एक अकेला अपने सुख दुख के लिए जिम्मेदार हूं ये अकिंचन धर्म है, और अपने आत्मा में लीन होना यह ब्रह्मचरी है, यह कि 5 इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर लेना, उनको जीत लेना, और 3 गुरु के सानिध्य में रहना, स्वच्छंद प्रवृत्ति छोड़ देना यह भी ब्रह्मचरी है, और कहते कि काम सेवन से मुक्त हो जाने का नाम भी ब्रह्मचर्य धर्म है। ऐसी ब्रह्मचर्य की विभिन्न परिभाषाएं बनाई हैं अपन को, इनके माध्यम से जो विशुद्धि बढ़ती है उससे संवर और निर्जरा होगी। ऐसा नहीं समझना कि इन सब चीजों की अपन ने धारण कर लिया सो हो गया काम। देखो मंगत राय की 12 भावना में पढ़ते हैं कि एक तो मुनि व्रत धारण करना कठिन है, लेकिन शुद्ध भाव करना और भी ज्यादा कठिन है। तो फिर बोधि दुर्लभ, जो केवल ज्ञान है वो तो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, अत्यंत दुर्लभ है। सो इन सब व्रत नियमों को पालन करने का उद्देश्य अपनी निर्मलता बढ़ाना है। जब निर्मलता बने बढ़ेगी इनके माध्यम से सभी, तभी संवर और निर्द्रा के लिए ये कारण बनेंगे, ऐसा अपन ध्यान में रखें। संसार की नश्वरता का विचार नहीं, ये पहले सूत्र पढ़ लो। अनित्याशरण संसारैकत्वा नित्वा सुच्याश्रो संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा या की भावनाएं हैं, अपन जानते ही हैं। अनुप्रेक्षा का अर्थ है विजुअलाइजेशन कम अंडरस्टैंडिंग। हम जिस चीज को जानते हैं उसका अनुभव भी करें तब वो कहलाएगी अनुप्रेक्षा। आचार्य श्री कहते हैं कि राजा राणा छत्रपति और हातिन के हसवार, जा तो पढ़ रहे आप, और जरा सा ऊपर लगा हुआ छत्र बंद हो जाए तो पंखा तो गड़बड़ हो गई भावना। नहीं, संसार की नश्वरता का विचार निरंतर बना रहे और उससे विरक्ति हो जावे तो अनित अनुप्रेक्षा जीवन में आ गई, और संसार में कोई भी शरण नहीं है, मात्र 4 शरण हैं, वही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य हैं। ऐसा भाव आ जावे तो अशरण अनुप्रेक्षा और संसार में तो निरंतर आश्रवंध के माध्यम से जीव जन्म मरण का दुख उठाता रहता है। ये संसार से विरक्त होना ही श्रेष्ठ है। ऐसा संसार का स्वभाव जानना, उसका निरंतर बोध रहना, जी निरंतर शब्द है इसमें, मोहर मोहर चिंतनम अनुप्रेक्षा, एक क्षण को विचार आ गया फिर गायब तो नहीं चलेगी अनुप्रेक्षा। निरंतर विचार चल रहा अंतर मुहूर्त तक, हमेशा ये चीज स्मृति में बनी रहे कि ऐसा स्वरूप संसार का है, तब अपनी उस विशुद्धि से संवर और निर्जरा होगी। संसार में सभी जीव अकेले हैं, किस बात के लिए? अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए। ऐसा एकत्व भावना में चिंतन करते हैं और शरीर और आत्मा दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों पृथक पृथक हैं, इस तरह का जो विचार निरंतर बना रहता है वह अन्यत्व भावना है। और शरीर को नहलाओ धुलाओ, कितना भी कुछ करो हैं, सुगंधित बनाने की कोशिश में खूब इत्र लगा लो, लेकिन शरीर का स्वभाव तो अपवित्र है। ऐसा निरंतर विचार बना रहे तो वो अशुचि भावना कहलाएगी। और जैसे कि नदी में से पानी निरंतर बहता रहता है, ऐसे ही संसार में कर्मों का, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का प्रवाह निरंतर जीव को चलता रहता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, कर्म का बंध हो या आश्रव हो, वह तो संसार का ही कारण है। ऐसा आश्रव के बारे में निरंतर विचार करते रहते हैं और आश्रव को रोकना ही संवर है। संवर होने पर ही जीव को संसार में अधिक नहीं भटकना पड़ता है। सो अपने आत्म शुद्धि के लिए संवर ही श्रेष्ठ है। ऐसी निरंतर भावना चलती रहे तो संवर भावना है। अकेले संवर के भेद प्रभेद इत्यादि का वर्णन पढ़ लेने से संवर भावना नहीं होगी, उसके गुण दोषों का विचार करके और संवर के लिए श्रेष्ठ मान करके अपन अगर संवर के कारणों को अंगीकार करते हैं तो जो विशुद्धि बढ़ेगी उसके माध्यम से ये संवर होगा, वही संवर भावना कहलाएगी। और निर्जरा भावना में तो कर्म अपना फल दे करके और आत्मा से पृथक हो जाते हैं। सो ऐसी निर्जरा तो जिसको सविपाक निर्जरा कहते हैं सभी संसारी जीवों के होती रहती है। पुरुषार्थ तो मेरा ये है कि मैं आत्मज्ञान पूर्वक कर्मों की निर्जरा करूं, संवर पूर्वक जो कर्मों की अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि के द्वारा की जाती है वही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। ऐसा निरंतर विचार करना ये निर्जरा भावना हो गई। और देखो तो मैं तो एक घर गृहस्थी में कर्ता बन के बैठ जाता हूँ, समाज का मुखिया बन के बैठ जाता हूँ, मेरे द्वारा ही सारा संसार चलता रहता है, ऐसा मिथ्या कर्तित्व भाव अपने भीतर रखे रहता हूँ। देखो तो ये सारा लोक छह द्रव्यों के द्वारा निर्मित है, कोई इसे बनाता नहीं है, कोई इसे मिटाता नहीं है, कोई इसे संभालता नहीं है, लेकिन देख मेरा अहंकार अज्ञानता इतनी है कि मैं कर्ता बन करके संसार का सारा काम करता हूं। ऐसा विचार आ जावे तो लोक भावना कहलाएगी। और अकेले किन्हू न करे न धरे को षट द्रव मई न हरे को सो लोक माही है, बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता, ऐसा पाठ कर लिया, हो गया लोक भावना का पाठ। नहीं भैया, मेरे कर्ता पने को चोट पहुंचनी चाहिए, वह मिथ्या लगना चाहिए कि मैं बेकार में सब चीजों का मुखिया बना फिरता हूं। ये लोक तो इसकी संरचना, इसका आकार प्रकार सब किस तरह का है, अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। मैं व्यर्थ ही ऐसा अहंकार करके अपना संसार बढ़ाता हूं। सो ऐसा विचार करना लोक भावना है। वो बोधि दुर्लभ में तो एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री अपन बने सो बड़ी दुर्लभता है। एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, क्रम क्रम से दुर्लभ होते चले जाते हैं। श्रावक कुल पाना भी दुर्लभ है, फिर उसमें सम्यक दर्शन पाना भी दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन हो जावे तो देशव्रत इत्यादि और दुर्लभ हैं, और फिर देशव्रत और सम्यक दर्शन भी है तो भी कोई ज्यादा दुर्लभ नहीं है, महाव्रत बहुत दुर्लभ है। सो महाव्रत और रत्नत्र भी धारण कर लिया, कहते नहीं इससे भी ज्यादा दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है ही, लेकिन शुद्ध भाव करो वो और दुर्लभ है, और ऐसे शुद्ध उपयोग को प्राप्त करो जो कि साक्षात केवल ज्ञान का कारण है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा अपन अगर विचार करते हैं बोधि यानी केवल ज्ञान की दुर्लभता का, तो उसको बोधि दुर्लभ भावना कहेंगे। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्या परिशा, मोक्ष मार्ग से विचलित न होने और कर्म क्षय करने के लिए जो सहन किए जाते हैं वो परिशय कहलाते हैं, और सहन अगर कर लिए तो वही परिशय की विजय हो गई। इस तरह से परिशय विजय, कर्मों की निर्जरा और मोक्ष मार्ग पर स्थिरता के लिए किए जाते हैं, ये अपन को सहन करते समय भूख प्यास की वेदना ये भाव बना रहे। कितने प्रकार के परिशय हैं, तो 22 परिशय हैं, उनके नाम एक सूत्र में स्वयं आचार्य महाराज उल्लेख कर रहे हैं। शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चरिया निषिद्या सैया क्रोश याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, ये 22 प्रकार के परिचय हैं, जिन भाषाएं अगर अपन जानना चाहें तो संक्षेप में जान सकते। एक चीज ध्यान रखना कि ये बहुत कठिन है जैसे लिखे हैं परिचय, इनमें से अपन एक आध कोनो सहन कर ले में तो बहुत ही अपने हाथ से पीठ थपथपा लो अपनी बस, और बाकी बहुत कठिन है। उसमें लिखा है कि ऐसी भीषण गर्मी, अपन तो जरा में ही अरे बहुत गर्मी है महाराज हवा करवा लो, जाकर जानी केत के कूलर में बैठ लो, हाँ एसी लगवा लो। इसमें जैसा वर्णन किया है कि मुनि महाराज शिला के ऊपर बैठे हैं और निदाघ की जेठ मास की गर्मी और पक्ष पक्ष के उपवास जिन्होंने धारण किए हैं इसके बाद भी उसे सहन कर रहे हैं, जो शुदा की वेदना लगी है, इतने सामर्थ्यवान हैं कि क्षण भर में चुटकी बजाते हुए उसका प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकार करने की उनके भीतर भावना उत्पन्न नहीं होती, तब वो शुदा परिचय को जीतने वाले कहलाएंगे। इसी तरह प्यास को की वेदना को जीतने तो पिपाशा परिचय, इसी तरह भीषण ठंड हो उसमें भी अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहे तो शीत परिचय विजय, और असह्य जो गर्मी है उसमें भी अपने आत्म ध्यान से विचलित नहीं होना वो उष्ण परिचय विजय है, और इसी तरह डांस मच्छर इत्यादि हैं, जीव जंतु हैं, उनके द्वारा दंश किए जाने पर काट लिए जाने पर शांति से उसे सहन कर ले। हम उस समय मुनि नहीं बने थे, हैं नैनागिर में जल मंदिर के वहां पर विश्राम कर रहे थे आचार्य महाराज के साथ, सो एक किसी बड़े कीड़े ने आकर के काट लिया रात्रि में, सो उसकी वेदना बहुत थी, सवेरे से सामायिक अच्छे से नहीं हो पाई, सो जाकर के आचार्य महाराज से निवेदन किया कि महाराज वेदना की वजह से सामायिक अच्छे से नहीं हो पाई, तो आचार्य श्री ने कहा कि सामायिक तो ठीक ढंग से ही करना चाहिए, कर्मों की निद्रा के लिए वेदना को सहने की कोशिश करनी चाहिए, जाओ प्राश्चित के रूप में रस परित्याग कर। लोगों को तो लगा कि अरे देखो तो कीड़ा ने काट दो और वैसे अच्छो भोजन वोजन करके आओ, ऐसी कहने थी है? तो उल्टा ये कह रहे कि नहीं रस परित्याग कर दे। कर्मों की निर्जरा तभी होगी जब अपन समता भाव रख करके और सहन करेंगे। इन सब में समता भाव बना रहता, अपने आत्मज्ञान में लीन रहते हैं। मुनि महाराज, नग्न परिचय विजय, नग्नता को धारण किया है तो लज्जा भी आएगी उसको जीतना। लोग नंगा कहेंगे, लुच्चा कहेंगे, लेकिन उनके प्रति अपने मन को कलुषित नहीं करना। एक बार एक महाराज को सुनना था कि किसी ने नंगा लुच्चा कह दिया, सो लोगों ने पकड़ लिया उस व्यक्ति को और मारपीट के लिए तैयार हो गए। महाराज ने कहा कि ठीक तो कह रहा है, काय को विकार में उसको मारपीट कर रहे हो, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है सो मैं नंगा ही हूं और केश लॉन्च करता हूं सो लुच्चा हूं। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात, ऐसे समता परिणाम अपने मन को कलुषित नहीं होने दिया तब जाकर के ये परिचय विजय होती है। अरति परिचय विजय, जैसे उपवन इत्यादि हैं, वीरान स्थान हैं जिनमें सुखद नहीं लगता, ऐसे स्थानों पर ध्यान अध्ययन और सामायिक इत्यादि में आत्म ध्यान में लीन रहते हैं तो अरति परिचय विजय होता है। और स्त्री परिचय विजय में स्त्रियों के द्वारा हाव भाव दिखाने पर भी अपने मन में विकार उत्पन्न नहीं होना, ये स्त्री परिचय विजय है। चरिया परिचय में तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन कर रहे हैं, बहुत प्रकार की बाधाएं आएंगी, उन सबको समता पूर्वक सहन करना, उनके प्रतिकार का उपाय नहीं करना। लोग रास्ते से जाते हुए आहार खो जा रहे और कह सकते कि देखो जी चले आए, ने कछू कमाऊता है, ने कछू काम करता है और बस अकेले भोजन हो चले आए। आक्रोश दिलाने के लिए ऐसे शब्द कह सकते हैं, लेकिन चर्या करते समय उनको सबको शांति पूर्वक सहन करना। कल हम कह रहे थे बच्चों से कि तुम्हारी वजह से हमें बहुत लोगों की बातें सहन करनी पड़ती हैं, महाराज इन्हीं इन्हीं से हार लेते हैं, इस प्रकार अपने मन में भाव आते हैं। चार लोगों के बीच बैठेंगे तो कहेंगे कि और तो सब ठीक है, मनोज्जा प्रक्रिया ठीक नहीं लगी हमें, है ऐसा भाव अपने भीतर आ गया। इस सब के बावजूद भी अपनी चर्या को ठीक ढंग से जैसा लिखा है वैसा का वैसा करेंगे। बहुत प्रकार से चर्या में इस प्रकार के वचन सुनने के लिए मिल जाते हैं। नाना प्रकार से लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, मैं किस हिसाब से सोच रहा हूं इसकी चिंता नहीं है उनको, हमारे हिसाब से सोचो। सो भैया हम तो इतना ही कहते कि जब तुम मुनि बनो तो ऐसा ही करियो जैसो तुम सोच रहे हो, अबे हमें कर ले दो जैसो करने से, है कि नहीं है, और क्या कहेंगे। बहुत हो गई थी, एक बार चर्या करके आचार्य श्री बैठे हैं और हम लोग उन्हीं के पास बैठी थी, एक व्यक्ति आन के कह लगे कई महाराज जी समझ में नहीं आया हमारे कौन से पाप का उदय है, बड़ी अच्छी चर्चा करी, आहार नहीं हो रहा है, ठीक है कोई अंतराय कर्म का उदय होगा ऐसा आचार्य श्री ने कह दिया। फिर बाद में कहने लगे महाराज कहीं कहीं तो एक हफ्ते में दो बार और कहीं पर 10-15 दिन में एक बार नहीं। केने तो जहाती वो के पहले चर्चा तो वे अच्छी कर रहे थे जिसे जवाब देवी को मन बन जावे। लोग ये समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूं सब बुद्धिमानी, दूसरा तो सामने वाला बुद्धू है, वो कौन समझते है। आचार्य श्री ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि भाई एक हफ्ते में जिनके यहां दो बार हुए हैं वैसे भाव तुम भी बनाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे ते रोज मुनि महाराज के आहार हो। अपन भाव अपने नहीं संभालते हैं और चीज ज्यों की त्यों जैसी दूसरे को पाते देख रहे हैं वैसी हमें भी चाहिए, ये अपनी अयोग्यता का सम्मान करवाने का अहंकार अपन को संसार बढ़ाने में ही कारण बनता है। चर्या परिचय आसान नहीं है, बहुत कठिन है। सब प्रकार की बातें सुनने के बाद भी जैसा आगम के अनुरूप है वैसी चर्या करना, इसलिए हमने कहा कि परिचय सहन करना बहुत कठिन है। निषद्या विभिन्न प्रकार के आसन इत्यादि लगा करके कठिन से कठिन, और उनमें जी टेलीविजन पे जो आसन लगा वो आउट है, वो नहीं नहीं खड़गासन पद्मासन विभिन्न प्रकार के कठिन कठिन वज्रासन इत्यादि लगा करके सामायिक करना, आत्म ध्यान में घंटों घंटों लीन रहें तो निषद्या परिचय विजय होगी। ऐसा नहीं समझना कि शरीर की फिटनेस के लिए एक से एक आसन अपन लगाओ, नहीं भैया कठिन से कठिन आसन लगाएंगे शरीर से जिससे कि आत्मा की उज्ज्वलता होवे। सैया परिचय जय, एक करवट से जिससे लेट गए तो फिर उतनी ही निद्रा लेना, 3 घंटे की दूसरी करवट बदलने का समय आ गया सो उठ करके बैठ गए, और अगर दूसरी करवट बदलना आवश्यक हो गया तो पीछे से प्रमार्जन करके करवट बदल के पुनः विश्राम करने लगे। ये सब सैया परिचय है। कठोर से कठोर सैया पर भी शांत भाव से लेटे रहते हैं। आक्रोश परिचय विजय, अज्ञानी जीव बहुत प्रकार के विहार करते समय वचन बोलते हैं जो कि गुस्सा दिलाने वाले हैं, आक्रोश दिलाने वाले हैं। जैसे पन पढ़ते के गाली सुन मन खेद न आन, गुण को ओगन कहे आन। अरे अज्ञानी है गुणवान को भी निर्गुणी कहेगा, और जो गुणवान नहीं है उसको भी गुणवान कहेगा। आक्रोश दिलाने वाले अपशब्द कहेगा, फिर भी अपने को अपनी समता नहीं छोड़ना। ये आक्रोश परिचय विजय सहन करते समय मुनि महाराज ध्यान रखते हैं। बद परिचय जय, अज्ञानी जीवों के द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाए, मारपीट इत्यादि भी की जाए तो भी उसे शांत भाव से सहन कर लेना। आप सोचत हुई है कि को मारत हुई है, महाराज जी को मारपीट को कर है, हम तो उनके पांव परत। भाई 1982 में शिखर जी की वंदना करने के लिए हम लोग संघ सहित जा रहे थे पश्चिमी बंगाल में, कलकत्ते की तरफ गमन हो रहा था। सो रास्ते में वो तो सब समझते नहीं है कि यह इस प्रकार का मार्ग है। सो नाना प्रकार के अपशब्द, रेती फेंकना, पत्थर फेंकना पीछे से, यह सब भी होता था। और यहां तक हुआ कि भाई हम और समता सागर जी पीछे रह गए, सारा संघ तो आगे निकल गया। सो उन 25-50 लोगों ने देख लिया कि अब तो सब संघ निकल गया, 2 ही साधु हैं, इनको तो अपन जीत सकते हैं। सो सबने 50 लोगों ने घेर करके एक व्यक्ति ने साहस करके और मुक्का मार ही दिया, और उसने एक ही मार पाया, पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, और फिर अब शब्द जो भी कहना थे वो कहता रहा, लेकिन मारपीट के लिए उत्सुक नहीं हुआ, काय उस सर्ग में लीन रहे। उतने 5 मिनट के अंदर तो जो लोग श्रावक जन थे वो आ गए, उनने कहा क्या कर रहे हैं आप, महाराज जी हैं आप उनको समझते नहीं हैं। कहने लगे नहीं, हमारी माँ बहनें सब यहाँ पर रहती हैं और उनके सामने नग्न निकल रहे हैं, ठीक नहीं है, ऐसा उनके मन में विचार था। फिर जब उनको सारी बात बताई तब फिर आहारचर्या के बाद आकर के आचार्य श्री से क्षमा याचना भी की उन्होंने। अगर उस समय उस बद्ध परिचय को सहन नहीं करे कोई तो विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी, और क्या होगा, ना कर्मों की निर्जरा होगी उल्टा और कर्मों का बंधन होगा। सो बद्ध परिचय को भी सहन करते हैं। याचना परिचय विजय, भिक्षा नहीं मिली, अलाभ हो गया, तब भी अन्यत्र दूसरे समय में याचना का भाव भिक्षा के लिए कि मुझे मिल जाए। दीनहीन चेहरा बना लिया कि 2 दिन से हम उपवासे हैं, हमारे लिए तो अच्छे से भोजन करवाओ, ऐसे याचना के भाव अपने मन में नहीं आएंगे। अपनी शर्त सहित ही चर्या जैसी लिखी है वैसी ही करेंगे। अलाप परिचय में भी यही है कि भिक्षा नहीं मिलने पर कोई विकल्प नहीं करेंगे कि देखो कैसे श्रावक हैं, हमारे लिए विधि नहीं मिली, ऐसा नहीं कहेंगे। उसमें लिखा मूलाचार में कि नहीं मिली तो यही तुम्हारे निर्जरा में कारण है, किसी को दोषी क्यों दे क्यों ठहराते हो। और फिर लिखा कि हे मूर्ख, मुनि महाराज के लिए लिखा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, अज्ञानी तूने क्या किसी के यहां पर संपत्ति रख दी थी, तेरा उधार देना है क्या जो कि तुझे आहार दे, नहीं मिला है तो समता पूर्वक सहन करो। ऐसे कठोर वचन कह करके समझाते हैं कि इस परिचय को सहन करने से कर्मों की निर्जरा होगी, रोग शोक व्याधि बहुत हो गई लेकिन उनका प्रतिकार भी कर सकते हैं, पर उन सब के लिए शांत भाव से सहन करते हैं तो रोग परिचय विजय है। चलते समय कांटे चुभ जाते हैं, पत्थर लग जाते हैं, बहुत प्रकार के रूखे स्पर्श मिलने पर भी तृण तो अपन कांटे को कहते, सो उसका स्पर्श हो जाने पर भी चुभ जाने पर भी उसे समता पूर्वक सहन करते हैं तो तृण परिचय विजय। और मल परिचय विजय, शरीर में स्नान इत्यादि नहीं करने से धूल और पसीने से बहुत सारी मैल जम जाता है, सो उसे देख करके साफ करने का विचार, सुंदर बनाने का विचार नहीं करते, नहीं उस मल से ग्लानी करते हैं तो मल परिचय विजय है। और सत्कार पुरस्कार, अरे हमें तो तुमने नरियल नहीं चढ़ाओ, हमें किसी काम में आगे ही नहीं किया, सो ऐसे आगे करने का या सम्मानित किए जाने का भाव मन के भीतर नहीं लाते। सत्कार पुरस्कार, सत्कार का मतलब अग्रेसर, आगे आगे करने का, और पुरस्कार यानी सम्मान करने का, दूसरा कोई मुझे आगे करे मेरा सम्मान करे, इस तरह की भावना मन के भीतर अगर आती है, देखो अपने पद की गरिमा बनाए रखना बात अलग है और अहंकार वश इस प्रकार के भाव उत्पन्न होना अलग बात है, ये अपन समझ लें सत्कार पुरस्कार में। और बहुत अधिक ज्ञान बढ़ गया तो ज्ञान का ही घमंड कर लिया तो फिर प्रज्ञा परिचय विजय नहीं होगी। बहुत अतिशय ज्ञान होने पर भी विनम्रता बनी रहे उसका कोई भी गर्व नहीं है तो प्रज्ञा परिचय जय। आचार्य श्री कहते कि बहुत कठिन है, थोड़ा सा ज्ञान हुआ और अहंकार आ ही जाता कि मैं जानता हूं और ठीक जानता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत चीज यह है कि मैं जो जानता हूं भले ही गलती हो लेकिन उसको ठीक सिद्ध करने की कोशिश करता है तो प्रज्ञा परिचय विजय में ऐसा नहीं करेगा। और अगर बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, तो लोग कहते हैं कि देखो तो महाराज जी बन गए और ज्ञान व्यान तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे अपशब्द कहने पर भी उसे सहन करना, क्या करें, हम तो कर्मों की निद्रा के लिए इस मार्ग पर आए हुए हैं, ज्ञान प्राप्त हो या नहीं हो कम से कम मेरा शरीर मेरे से भिन्न है ये ज्ञान तो है, कषाय नहीं करना, राग द्वेष मोह नहीं करना, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। भले ही क्षयोपशम कम होने से अपन को और दूसरा किताब का ज्ञान नहीं हो पावे, ऐसा भाव अज्ञान परिचय को जीतने के लिए मुनि महाराज रखते हैं। खूब तपस्या करी और कोई भी विशेष शक्ति अतिशय इत्यादि प्रकट नहीं हुआ तो मन ही मन ऐसा भाव आ गया कि सुनते तो थे कि इस मार्ग पे तपस्या करने से बड़ा प्रभाव बढ़ता है, बड़ा अतिशय प्रकट होता है, ज्ञान हो जाता है, लेकिन कछु तो नहीं भाव, मार्ग तो ठीक नहीं है, ऐसा मोक्ष मार्ग के प्रति अश्रद्धान भाव उत्पन्न होने लगे तो उसे सहन कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तब आदर्शन परिचय विजय ऐसा प्रकट हो जाता है जिसके द्वारा अपनी विशुद्धि से निरंतर वो अपने कर्मों का संवर कर लेते हैं। इस प्रकार ये 22 परिचय हैं। सूक्ष्म सांप्राय श्रद्मस्त वीतराग योश चतुर्दश जो सूक्ष्म सांप्राय नाम का दसवां गुण स्थान है, वो विद्राग षदमस्त दशा जो बारहवां गुण स्थान है, उसमें तो 14 ही परिचय होते हैं इनमें से। और एकादश जिन्हें जिनेन्द्र भगवान के 13वें गुण स्थान में 11 ही परिचय संभव हैं, से नहीं करना पड़ता, लेकिन कर्म के उदय से तो रहेंगे विद्यमान, ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवंतों का कहना है। नहीं तो तुम कह लगो कि भैया सब उतरे होते हैं कि नहीं, सो फिर किसी ने खंडाकार आ लगा करके अजय ने बना दिया इसी को, सो 11 परिचय जिनेन्द्र भगवान के नहीं होते। अपन देखें कि उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती, मात्र कर्म के उदय में उनकी स्थिति तो वहां तक बनेगी ही, ये कहना चाह रहे हैं। वादर सांप्राय सर्वे जब तक कषाय विद्यमान हैं, 9वें गुण स्थान तक, 6ठे से 9वें गुण स्थान तक, क्योंकि परिचय तो विजय तो 6ठे गुण स्थान में ही होगी, सो 6ठे से 9वें गुण स्थान तक प्रमत्त संयत से लेकर के 9वें गुण स्थान तक कितने परिचय हैं, सब परिचय हो सकते हैं। ज्ञानावरणी प्रज्ञा ज्ञानी, ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय दोनों ही होते हैं, कमती ज्ञान और ज्यादा ज्ञान दोनों ही ज्ञानावरण के सद्भाव में जित्ता जित्ता से उपसम होगा वैसा होगा। और दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो, दर्शन मोहनी मिथ्यात्व का उदय और अंतराय कर्म विद्यमान होवे तो अदर्शन का भाव और अलाभ होने पर पीड़ा का भाव आ सकता है, लेकिन उसको भी जीत लेना, ऐसा परिचय विजय इस दर्शन मोहनी और अंतराय कर्म के क्षय उपशम से ही हो। अंतराय का तो क्षय उपशम रहेगा, दर्शन मोहनी का भी क्षय उपशम सम्यक दृष्टि है तो क्षय उपशम रहेगा, नहीं तो उपशम और क्षय भी हो सकता है। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार, चारित्र मोहनी के उदय से नग्नता अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये परिग्रह ये परिचय होते हैं, इनको विजय प्राप्त करते हैं मुनि महाराज। वेदनीय शेषा जो शेष परिचय हैं सब वेदनी साता साता, उसमें से विशेष रूप से असाता कर्म के उदय से ये होते हैं। एकादयो भाज्या युगपद एकस्मिन्ना कस्मिन नैकून विंशते, एक साथ अगर 22 परिचय में से होवे तो कितने हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं। शीत और उष्ण में से कोई एक होगा, निषद्या चरिया और सैया में से 3 में से कोई एक होगा, इस तरह से 22 में से 3 कमती हो गए, सो 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं अगर होवे तो। इसके बाद चारित्र का नंबर आता है, तो चारित्र 5 प्रकार का है। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यात मिति चारित्रम, निरंतर आत्मा में लीन रहना समता भाव धारण करना यही सामायिक चारित्र है, और विकल्पों की निवृत्ति होना ही छेदोपस्थापना है। एक परिभाषा तो छेदोपस्थापना की ये है, और सामायिक से च्युत होकर के जो शुभ क्रियाएं हैं उनका विकल्प कर लिया, सो पुनः सामायिक में लीन होने के लिए जो उपाय करते हैं, प्रायश्चित इत्यादि प्रतिक्रमण करते हैं, वो सब शेद उपस्थापना चारित्र के अंतर्गत ही आएगा। शेदे ससी उपस्थापना, दोष लग जाने पर उसे प्राश्चित इत्यादि से परिमार्जित करके पुनः आत्मा के स्वभाव में लीन हो गए, यह छेदोपस्थापना चारित्र है। परिहार विशुद्धि तो 30 वर्ष तक घर गृहस्थी में सुखपूर्वक रह करके और 1-3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बीच में वर्ष पृथक काल तक केवली भगवान के पाद मूल में जिन्होंने प्रत्याख्यान नाम के चारित्र का ग्रंथ का स्वाध्याय किया है विशुद्धि पूर्वक, सो उनके लिए यह परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र उत्पन्न होता है। सब मुनि महाराज को हो ऐसा नहीं है, विशेष किसी मुनि महाराज को यह परिहार विशुद्धि संयम उत्पन्न होता है और इस संयम के प्रभाव से किसी जीव का गमन करने पर विघात नहीं होता। इसलिए जिसको परिहार विशुद्धि संयम या चारित्र की प्राप्ति होती है उन मुनि महाराज को 2 कोश प्रतिदिन गमन करना अनिवार्य है। उनके चतुर्मास इत्यादि में एक स्थान पर रुकने का नियम नहीं है जिनके परिहार विशुद्धि संयम है। और सूक्ष्म सांप्राय जो चारित्र है वो तो कषाय लोभ कषाय की सूक्ष्मता जो 10वें गुण स्थान में विद्यमान है वहाँ उस समय जो चारित्र की स्थिति रहती उसे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहते हैं। और 10वें गुण स्थान के बाद चाहे उपशम श्रेणी चढ़े चाहे छपक श्रेणी चढ़ के 11वें 12वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में सब यथा क्या चारित्र जैसा आत्मा का स्वभाव है उसी में लीन रहना कषाय के उदय का अभाव होने पर यह यथा क्या चारित्र बन जाता है। अनसनाओ मौदरी वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा वायम तपा। आपने कहा था कि तपस्या के द्वारा संबर भी होता और निर्जरा भी होती, सो तप कितने प्रकार का होता। कहते अंतरंग और बाह्य 2 प्रकार के तप होते हैं। बाह्य में तप अंतरंग की विशुद्धि के लिए धारण किया जाता है, सो बाह्य तप भी धारण करने योग्य है, वो 6 प्रकार का होता है। अनसन उपवास इत्यादि की साधना करना, भूख जितनी है उससे कम भोजन करना अवमोदरी, और कोई ना कोई अभिग्रह या वृत्ति का परिसंख्यान करके आहारचर्या करना वृत्ति परिसंख्यान है। वृत्ति परिसंख्यान 4 प्रकार का होता, जिसमें मोहल्ले की वृत्ति, दाता की वृत्ति, पात्र की वृत्ति और भोजन की वृत्ति, इन सब को सीमित कर लेते हैं, इन सब की संख्या मन ही मन निर्धारित कर लेते हैं, सो वृत्ति परिसंख्यान यह तप कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तो आज अपने दाएं तरफ जाऊंगा, मैं तो बाएं तरफ जाऊंगा, मैं तो उस मोहल्ले में ही चर्या के लिए जाऊंगा, ऐसा विचार कर लिया तो ये मोहल्ले की वृत्ति हो गई। और फिर 2 लोग खड़े होंगे कि 4 खड़े होंगे कि चाय जितने खड़े होंगे, दाता कितने होंगे, इस बात का भी संख्या निर्धारित कर ली तो ये दाता की वृत्ति हो गई। अब भीतर भी चले गए लेकिन विचार कर लिया कि मैं तो चांदी के बर्तन में जो सामग्री देंगे उसे ही लेऊंगा और चांदी के में तो देंगे नहीं, इसलिए मैं लेऊंगा ही नहीं। सो इस प्रकार पात्र की वृत्ति भी कर सकते, विभिन्न धातुओं के पात्रों का त्याग करके और अपने भोजन को ताकि अल्प मात्रा में ही ग्रहण करने के लिए अवसर आवे, सो ऐसी सीमा बना लेते हैं। सो ये पात्र की वृत्ति और भोजन की वृत्ति, चाहे जिस घर में भी चला जाऊं छोटे बड़े का विचार नहीं है, भोजन के भी बहुत रस युक्त या कि नीरस मिलने का भी भाव नहीं है, मैं तो 5 प्रकार का 7 प्रकार का ही भोजन ग्रहण करूंगा चाहे जहां भी चला जाऊं, ऐसी भोजन की वृत्ति कर लेते हैं तो वृत्ति प्रसंख्यान है। वृत्ति प्रसंख्यान तप लिया जाता है आचार्य महाराज की आज्ञा से, तब वो तप कहलाएगा। ऐसे रोज अपने कोई ना कोई जिसको अपन विधि कहते हैं, शर्त कहते हैं, सो भिक्षा के लिए निकलते समय आशा की निवृत्ति के लिए और राग द्वेष के परिहार के लिए जो धारण करते हैं वह तो मूल गुण के अंतर्गत आएगी, लेकिन तप तो उत्तर गुण है, विशेष रूप से आचार्य की आज्ञा से धारण किए जाते हैं। वृत्ति परिसंख्यान एकांत स्थान में शयन आसन इत्यादि करना, वहां पर अगर अपन अपरिचित जगह पर सो तो खटका लगो रहे, नींद नहीं आऊ है, जानते ही नहीं है कि कैसा स्थान है, तो ऐसे विविक्त एकांत स्थान पर शयन करना और स्वाध्याय इत्यादि करना, ये विविक्त सैयासन है। और काय क्लेश शरीर पर आने वाली पीड़ा को शांत भाव से सहन करना, शरीर को कष्ट देना, ये अर्थ नहीं है काय क्लेश का। शरीर के माध्यम से आने वाले कष्टों को समता पूर्वक सहन करना, धूप का है, पानी का है और ठंड का है, ये सब प्रकार के कष्ट अपने आप आते हैं, आएंगे, इन सब में समता भाव रखना और अपनी तरफ से इन कष्टों को अंगीकार करने के लिए उत्सुक रहना। जरा धूप में खड़े होकर के मैं तपस्या करूं, इस तरह का भाव आ गया कर्मों की निद्रा करने के लिए, तो शरीर पर आने वाले कष्ट को समता से सहन कर लिया, शरीर को कष्ट में डाला। ऐसा नहीं है भाई, काय क्लेश का अर्थ शरीर पर आने वाले कष्ट को सहन करना, यानी अपने शरीर को की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये तप किया जाता है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम, अंतरंग में छह प्रकार के तप धारण किए जाते हैं, अपने दोषों का शोधन करने के लिए जो उपाय किया जाता है वो सब प्रायश्चित कहलाता, और पूज्य पुरुषों के प्रति जो आदर का भाव है वो तो विनय कहलाएगी, और पूज्य पुरुषों की वीतरागी जनों की यथायोग जो सेवा शुश्रूषा है वो सब वैयावृत्ति। ये सब अंतरंग की बातें हैं, वायु में अकेले पांव दबा दे सो हो गई वैयावृत्ति, भैया ऐसा नहीं है। वैयावृत्ति हंसी मजाक थोड़ी है, वैयावृत्ति तो अंतरंग के परिणामों में जो वीतरागता के प्रति अनुराग है सो उसके द्वारा संपन्न होती है, अंतरंग तप है। और आलस छोड़ करके निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना, ये स्वाध्याय तप है। और शरीर के प्रति मैं और मेरेपन के भाव का त्याग करना, उसको विसर्ग तप कहते हैं। और आत्मा में लीन होने का अभ्यास करना, ये ध्यान कहलाता है। नौ चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्, ध्यान से पहले पहले जो अंतरंग तप कहे गए हैं उन सब के भेद प्रभेद कितने हैं, नौ चार चार दस पांच और दो। स्वपन देखें कि प्रायश्चित के तो नौ भेद हो गए और विनय के तो चार हो गए, और वैयावृत्ति दस प्रकार की है, पांच प्रकार के स्वाध्याय हैं और विसर्ग के दो भेद हैं। इस प्रकार से इन सब के भेद प्रभेद करे गए हैं। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना, ये नौ प्रकार का प्रायश्चित होता है। गुरु के सामने सरल चित्त हो करके अपने दोषों का निवेदन करना, जैसे के माने बहुत अच्छे कपड़े पहना के और समझा बुझा करके खराब न करियो, और छोटे से बच्चे को बाहर भेजा सो बेटे जी तो नाली में से गेंद उठा के खेल रहे थे, सो उनके कपड़ा सबरे खराब हो गए। अब उनने देखा कि कैसे जाएं माँ के पास, तो जब मेहमान आने वाले थे सो माँ के पास जाके खड़े हो गए हैं कि अब कपड़ा बदलो नहीं तो तुम्हारी हंसी हो जाए कि देखो तो इनकी मोड़ा मोड़ी कैसे घूमत रहती खराब से हैं। अत्यंत ये तो चालाकी का भाव हो गया, लेकिन बहुत सरलता पूर्वक जैसे माँ से पुत्र अपने दोषों को नहीं छुपाता है, ऐसा ही गुरु के समक्ष जाकर के और सहर्ष अपने दोषों का कथन कर दिया, निवेदन कर दिया, ताकि उन दोषों से मुक्त हो सकें। वो प्रायश्चित आलोचना प्रायश्चित कहलाएगी, अपने दोषों की आलोचना करना। दूसरे की तो आलोचना अपन बहुत करते हैं, लेकिन अपने की